نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے رب کی رضا کو چاہنے کے لیے اپنے نفس کو بھی بیچ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ آج ہم اصلاح القلوب کے سلسلے میں اگلا ٹاپک شروع کریں گے اور وہ ہے تسلیم و رضا۔ ابھی تک جتنے بھی ٹاپک پڑھے ہیں یہ آپ کے لیے نون تھے، یعنی جن کا ذکر عموماً ہمارے کلچر میں ہے۔ کون ہے جو اخلاص سے نہیں واقف، کس نے توکل کا لفظ نہیں سنا، کون محبت نہیں جانتا اور کون خوف نہیں جانتا، کون امید کو نہیں جانتا اور کس نے تقویٰ کو نہیں سنا۔ لیکن میرے گمان کے مطابق اب جب ہم جو ٹاپک کرنے لگے ہیں یہ آپ میں سے بہت ساروں کے لیے نیا ٹاپک ہوگا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سیریز کی پرائم لوکیشن ہے یہ تسلیم و رضا، جس کو رضا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے تسلیم و رضا؟ ایک جملہ میں تو بول سکتی ہوں کہ یہ دنیا کی جنت ہے۔ تسلیم و رضا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سے راضی ہو جائے۔ پیچھے ہم نے محبت کا ٹاپک پڑھا تھا، جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت کے بعد جو پھل ملتا ہے نا آپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر فیصلے پہ راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہونا، اس کی دی ہوئی شریعت پہ راضی ہونا، اس کے دیے ہوئے دکھوں پہ راضی ہونا، اس کی دی ہوئی خوشیوں پہ راضی ہونا، اس کے دے کر لیے ہوئے پہ راضی ہونا، اس کے رب ہونے پہ راضی ہونا، اس کے رسول ہونے پہ راضی ہونا، اور اس کے دیے ہوئے دین پہ راضی ہونا، اور اس کی دی ہوئی مصیبتوں پہ خوش ہونا، یہ سب کچھ ہے تسلیم و رضا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی رضا مل جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں وہ چیز مل گئی جو جنت کی نعمتوں کو بھی بھلا دے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب کچھ پانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جنتیوں کچھ مانگو، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا مانگے، سب کچھ تو آپ نے دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں آج کچھ اور مانگو، میں آپ کو کچھ اور دینا چاہتا ہوں، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ ایسی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ابھی تک نہیں ملی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہوں۔ اور جنتیوں کو یہ خوشخبری پا کر جنت کی باقی نعمتیں بھول جائیں گی اور وہ اس پہ خوش ہوں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جنت کی طلب نہیں کرتا، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور اللہ کو پانے کا مقام جنت ہے۔ اب اس کو ایسے کہہ لیجئے کہ آپ اپنی دوست کو ملنے جاتی ہیں، اس کے گھر کو ملنے نہیں جاتے، اس کی کرسیوں میزوں کو نہیں جانتے، لیکن جب آپ اپنی دوست کے گھر جاتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی خدمت خاطر کرتی ہیں۔ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو تجھ سے اس حال میں ملنا ہے کہ تم سے راضی ہو، ورضوان اللہ اکبر، اور تو ہمیں سونے کے پلنگ دے دے جنت میں، چاندی کی کرسیاں دے دے، عدن دے دے، ماوا دے دے، تیری خوشی تو جو دے، لیکن ہم تجھ سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا، اور جب یہ نعمت بندے کو دنیا میں مل جاتی ہے تو وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جنت دنیا میں بن جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، لوگوں نے ان کو حق گوئی کے جرم میں کہہ لیجئے، کیونکہ حق جو گوئی ہر دور میں ایک جرم ہی ہوتا ہے، جیل میں ڈال دیا۔ تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے میرے دشمنوں نے مجھے جیل میں ڈال کر کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں لیا، کیوں؟ ان نہ جنتی مائیا، میری جنت تو میرے ساتھ ہے۔ حقیقت ہے کہ جب بندے کو تسلیم و رضا ملتی ہے نا تو وہ جیل کی کوٹریوں میں بھی خوش رہتا ہے، اور وہ کنویں کی گہرائیوں میں بھی پر امید رہتا ہے، اور وہ مچھلی کے پیٹ سے بھی نکل آتا ہے، اور وہ 15-18 سال کی بیماری سے بھی نکل آتا ہے، یہ کہہ کر کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا۔ تو یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، آپ کہہ لیجئے پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ انسان اللہ پہ راضی رہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے تسلیم اور رضا کا فرق کیا ہے، तस्लीम लफ्ज को देखें तो सालिमा से सलीमा, सर झुका देना, सलामत, सलाम लफ्ज भी इसी से ही है। फिर इसके हम मुख्तलिफ दरजात देखेंगे। फिर इसकी हम चार बड़ी किस्में देखेंगे कि रज़ाए वाजिब क्या होती है, और रज़ाए मुस्तहब क्या है, और फिर रज़ाए हराम क्या है। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि इस दर्जे तक पहुंचने के तरीके क्या हैं, असबाब क्या हैं, वसाइल क्या हैं। फिर हम सब्र और तस्लीम में माँ बहन जो फ़र्क है वो भी देखेंगे, और फिर हम देखेंगे इसके समरात और फवायद क्या हैं, और एंड पे फिर हम देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। ये वो टॉपिक है कि जो हमें बचपन में पढ़ने चाहिए थे। यकीन कीजिए, हमने बहुत देर की इनको पढ़ते हुए। रजामंदी क्या है? कि दिल दिमाग के साथ आप यकसू हो जाएं, फोकस्ड हो जाएं। आप यहाँ छोटी सी बात भी समझ लीजिए, हर बंदा अपनी तबीयत के एतबार से, जो उसमें अना है ना, अना, ईगो, आई एम, उसके एतबार से वो मनवाना चाहता है। वो कहते हैं लोग मुझे माने। इसको समझिएगा, पैदा होते ही बच्चे को देखिए माँ से अपनी बातें मनवाता है, नहीं दूध पीना तो नहीं पीना, झगड़ रहा है तो झगड़ रहा है, नींद भी आई तो रो रहा है। अब एक बंदा अपनी अना के एतबार से वो खुद को राजी करना चाहता है, अल्लाह उससे ऑपोजिट चाहते हैं, या का नाबुद व या का नस्ताइन। जब बंदा खुद को बड़ा करना चाहता है, अल्लाह कहता है नहीं तुम मेरे बंदे बनो। तो जो चीज़ बंदे को बंदा बनाती है ना, वो तस्लीम और रज़ा है। जिस दिन बच्चा ये मान लेगा ना, ये औरत मेरी माँ है, अब मुझे इसकी माननी पड़ेगी, ये मुझे दूध भी देती है, मेरी गंदगी साफ करती है, ये मेरा ख्याल करती है, तो अब मैं ज़िद करूँ जो भी करूँ, लेना तो फिर इससे ही है। तो उस दिन आप देखेंगे कि बच्चे के मिजाज में सुकून आता है। इसी तरह इंसान अपने आप को मनवाना चाहता है, वो कहता है मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी, मेरा अपना आप। लेकिन जब वो अल्लाह ताला से राज़ी हो जाता है ना, तो आप कह लीजिए कि अपनी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी में देने का नाम तस्लीम और रज़ा। कह अल्लाह हैंड्स अप, सरेंडर, बस दैट्स इट, गिव अप, आई गिव अप, बस मेरा आज से कुछ नहीं है। अब देखिए ना, हम इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से आए, ना हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, तो बीच में बात कितने सालों की है? 25-30 साल हैं जिसमें मर्जियां करते हैं, उसके बाद तो ज़िंदगी में भी मर्जियां नहीं हो पाती। तो अगर ये 20-25 साल अल्लाह की रज़ा के गुजार दें, तो आप कह सकते हैं कि हमने तस्लीम और रज़ा पा ली। और जिसको ये पाई जाएगी ना, उसका एक तोहफ़ा ज़िंदगी में मिलेगा, और वो यकसुई है। इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम, काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने टाइटल ही ये बना दिया, जब कभी उससे कहा मुस्लिम हो जाओ, तस्लीम कर लो, कर लिया। आप देखिए ना, उर्दू में आप कहते हैं ना, मैं ये बात तस्लीम ही नहीं कर सकती। सलीम यस्लिमु क्या होता है? किसी के आगे सर झुका देना। सलीम कहते हैं अरबी ज़ुबान में सांप के डसे हुए शख्स को, थर थराता है, यूं कांपता है, ऐसे कांप रहा होता है वो। कल्बे सलीम कह लीजिए या नफ्से सलीम, वो है जो हर वक्त हरकत में रहता है, जामित नहीं होता, उसको करार नहीं है किसी जगह, वो तड़पता ही रहता है, उसका दिल मुर्दा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से जब एक बंदा अल्लाह के हर हुक्म पर सर ही डाल दे, तो इसको तस्लीम और रज़ा कहते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। एक दफ़ा बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने की कोशिश की थी, सिर्फ चली नहीं, अल्लाह ने उसको ऐसे प्रिजर्व किया। हर साल करोड़ों मुसलमान बकरों की गर्दनों पे छुरियां चलाते हैं। ये है तस्लीम और रज़ा के फवायद, ये बरकात मिलती हैं। हज़रत इब्राहिम ने एक वीरान बंजर जगह पे घर आबाद किया, अल्लाह के कहने पे, अकल नहीं इस्तेमाल की, अल्लाह अपना घर तो पहले बना लूँ, पहले घर के तो काम ख़त्म कर लूँ, फिर आपके भी काम हो जाएंगे, और आपके काम तो कभी ख़त्म नहीं होने। ऐसी कुछ ऊँचा नहीं की इब्राहिम ने, अल्लाह ने उनको अपने घर का मौका दे दिया, चलो जाओ मेरा घर बनाओ, साफ करो, तवाफ करने वालों के लिए। बस अल्लाह ने आज तक उस घर को आबाद रखा। आज देखिए वहाँ इतनी रिपेयर हो रही है, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसके बावजूद जाने वालों का शौक कम नहीं होता। ये इब्राहिम के तस्लीम और रज़ा का तोहफा है। जब हम दिल की गहराई से अल्लाह से राज़ी हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला सीने को यकसू करता है। आप अपने ऊपर लीजिए, आप इस जगह पे हैं, कुरान सीखने आए, आज आए, या 5 साल से आ रहे हैं, या 6 साल से आ रहे हैं, या जब से भी, या कहीं भी जाते हैं, फोकस्ड हूँ, यकसू हूँ, अब इधर उधर तो नहीं देखती, क्या करूँ उधर जाऊँ। मैं इसको एक मिसाल देती हूँ अक्सर, कि आप देखिए जब शादी नहीं हुई होती ना, तो माँ बाप काफ़ी छान फटक करते हैं रिश्ता करने से पहले, लड़का कैसा है, उसके माँ बाप कैसे हैं, वो काम क्या करता है, जो भी एक मोहब्बत करने वाला बाप देख सकता है वो देख लेते हैं, फिर एक दफा जब शादी जो हो गई, अब जब साथ रहता है तो बंदे को तय में कई चीजें नजर आती हैं और वो हमेशा ही होती हैं। सजे हुए डाइनिंग टेबल को देखें और अंदर के किचन को देखें, फर्क तो होगा। अब क्या कहते हैं, अब उसको उस लड़के में, उस घर में 10 बातें भी दिखें तो क्या कहते हैं, बेटा अभी इधर ही रहना है, इसी घर में बसना है, अब ये छोड़ना नहीं, घर छोड़ने के लिए नहीं बनते। इतनी बात समझ गए ना कि जब तक रब नहीं लिया था तो रब को परख लो, जब ले लिए अब फोकस हो जाओ। इसी को कहते हैं कि हनीफ लिल्ला, ये तस्लीम और रजा का ही तोहफा है कि बंदा हनीफ बनता है, फोकस्ड। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान अल्लाह के नाम पर एक फैसला कर लेता है ना, तो बस फिर शक नहीं लाए, फिर अल्लाह पर डाल दें, वो बदगुमान हैं, वो कैसे हैं, वो बद लोग हैं, जो भी हैं। आपने सदका दे दिया, मत सोचिए कि इस सदके को किसी ने कहाँ इस्तेमाल किया, आप अपनी नेकी न जाया करें। तो नेकियां करना और जम जाना और मुतमईन हो जाना, दैट्स इट, ये है इंसान को खुशी देने वाली चीज। और अगर आप इधर देखें, उधर ताकें, उधर झांके, जब तक आप यकसू और फोकस नहीं होते, आप उस काम पे जमते ही नहीं है। मैं इसको इस तरह भी समझती हूँ कि जैसे आप देखिए कि भूख लगी होती है ना, तो बंदा कभी ये छांकता है, कभी वो पकड़ता है, कभी यहाँ से खा लूँ, अभी ये खा लूँ, तो भूख खत्म कोई नहीं होती, और बल्कि लग जाती है। और एक दफा आप बैठे प्रॉपर, आपने जो खाना था खा लिया, उसके बाद सोने की भी चीज़ को ले आए, आप कहते हैं मुझे भूख नहीं। ये जो कैफियत अपना मनपसंद खाना खा के आपको होती है ना, ये है तस्लीम और रजा की। अब ये सारी बातों का हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर अल्लाह से मोहब्बत का भी टॉपिक आपकी जिंदगी में पूरा नहीं खुला, तो भी रुक जाइए, आगे ना बढ़िए, अभी सब्र कीजिए। मोहब्बत की जड़ें गहरी होंगी ना, तो तस्लीम और रजा के बरगुबारा आएंगे, फिर पत्ते लगेंगे, फिर ये दरख्त आएंगे। और ये याद रखिए कि तस्लीम और रजा ही वो दर्जा है कि जिसके बाद विलायत मिलती है, जिसके बाद मुकर्रबीन में बंदा शामिल होता है, जिसके बाद सिद्दीकियत का मुकाम मिलता है, और जिनको मिलना था मिल चुका, अब नहीं मिलेगा, लेकिन नबुव्वत का मुकाम भी तस्लीम करने वालों को मिलता है। फिर एक और तोहफा भी मिलता है अल्लाह की तरफ जमने और अल्लाह ताला से राजी होने वाले को, और वो क्या है कि उसका सीना खुल जाता है, तवंगुरी आ जाती है, उसके अंदर इतना गिना है दूसरों से, बेनियाज, फिर अमन और अमान इसका एक तोहफा है, कनात आती है, तवंगुरी, अपने हाल पे राजी। एक बात करके तो आगे चलती हूँ कि आप देखिए कि एक शख्स है, यानी ऊंचे दर्जे पे है, 10वीं सीढ़ी पे खड़ा, वो वहां भी खुश है, मिसाल है वहां जाके खुश हुआ, अब वो खुश तो है लेकिन खतरा तो है कि पाँव फिसला तो 10 से नीचे गिरेगा। वो कहता मैं इतनी दुनिया लेकर खुश हुआ, जरा सी दुनिया पीछे होगी तो वो गिरेगा ना। एक शख्स पहले फ्लोर पे खड़ा है अभी, वो कहता मैं यहीं खुश हूं, उसको क्या खतरा, ये सिक्योर है। तस्लीम रजा क्या है, जो मेरे रब ने मुझे दे दिया, वेलकम, आई एम हैप्पी, आई एम प्लीज्ड, जो भी। और इसमें पूरी शरीयत आएगी, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। यानी जब बंदा अल्लाह पे राजी होता है, तो वो इतना ट्रस्ट करता है अल्लाह पे कि मेरा अल्लाह मेरे बारे में बुरा नहीं चाहता। जैसे बच्चे माँ बाप के आगे चल पड़ते हैं ना, माँ बाप उनको जिधर गाय लग जाते, बच्चे नहीं सोचते कि पता नहीं हमें मार ना दें, हमें गिरा ना दें, हमारा नुकसान ना कर दें। बच्चे को स्कूल में ले जाएं, बच्चे चले जाते हैं, बच्चे के नाखून काटे, बच्चा कटवा लेता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन नहीं। उसी कैफियत को बहुत आगे कर लीजिए, तो यही तस्लीम और रजा है। और दुनिया में जो चंद लोग आज मुतमईन और खुश है ना, मैं ये नहीं कह रही खुशकिस्मत है दौलत या दीन के हिसाब से, ना इसका ताल्लुक दीन से, ये भी याद रखिए, किताबें पढ़ने से नहीं है इसका ताल्लुक, और ना दुनिया की दौलत कमाने से, ये दिल की कैफियत है। अल्लाह अनपढ़ बद्दू को भी दे सकता है, और बड़े आलिम जो सारी दुनिया को सिखा रहा हो, अल्लाह उसको भी इससे महरूम कर सकता है। लेकिन ये है वो दौलत कि जो जिसको मिल गई, वो कहना चाहिए कि वफी ज़ालिका फल यतनाफसिल मुतनाफिसु, बस चाहिए कि इसी में रग़बत करें रग़बत करने वाले। तो अल्लाह से राजी होना कोई छोटी बात नहीं है, कंप्लीट ट्रस्ट है, इसी में तवक्कुल की गहराई है, इसमें मोहब्बत की शिद्दत है, खशियत, इसमें जितने टॉपिक आपने अभी तक पढ़े हैं ना, वो सब एक के बकेट में डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, तो उसके बाद जो अंदर से एक मरहूला निकलेगा ना, वो तस्लीम और रजा का हैंड्स अप, मुझे पूरा ट्रस्ट है, मुझे अपने रब पर इतना यकीन है कि बच्चा भी मेरा मर गया तो मैं उस पर भी खुश हूँ, मुझे हैंडीकैप बच्चा मिल गया मैं उस पर भी खुश हूँ, मियाँ की जॉब चली गई तो भी खुश हूँ, मियाँ भी चले गए तो खुश हूँ। यानी ऐसे बंदे को कोई चीज दुखी नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। ऐसे बंदे की अगर आंख भी रोएगी ना, उसका दिल मुतमईन होगा, उसके दिल में कभी ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं दुखी हूँ, मैं बदनसीब हूँ, मैं महरूम हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब जुमले काट दीजिए उसकी ज़िंदगी में। अगर ये जुमले हैं हमारी ज़िंदगियों में, तो समझ लीजिए कि तस्लीम और रज़ा की कमी है। फिर वो एक अटकल लगी हुई है, एक इधर खींच रहे तो एक इधर, रस्सा कशी है। नफ्स कुछ कहता है, वो कहता है मेरी सुनो, अल्लाह तरफ बुलाते हैं। यानी रस्सा कशी चलती है तो सुकून नहीं मिलता। और आप देखेंगे कि जन्नत में जाकर नेमत ये मिलनी है रिजवानुल्लाह की, अल्लाह की रज़ा जितनी बड़ी है ना, जिसने दुनिया में इस चीज़ को आजमा लिया उसको दुनिया में जन्नत की खुशबू आएंगी। तो आइए देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या है, और अल्लाह ताला हमें इससे खैर लेने वाला बना दे। इस मौजू की अहमियत क्या है? पहली बात है कि हम ये क्यों पढ़े, कुछ और क्यों ना पढ़ ले इस वक्त में? कुरान ही पढ़ लेते तो कितने सारे पढ़ चुके होते जब से ये सीरीज शुरू की हुई है। मैं कहूंगी कि इन चीज़ों के पढ़े बगैर कुरान पढ़ना भी ज्यादा फायदा नहीं देता। अबू दरदा से रिवायत है, कहते हैं कि ईमान में चार चीज़ें चोटी की हैसियत रखती हैं। अब आप लफ्ज़ जब ईमान के ना, तो सोचा करें ईमान क्या था, ईमान क्या है। अच्छा ईमान, ओके, अल्लाह को मानना, उस पर राजी होना, चार चीज़ें उसमें बना। यानी मुराद है कि ईमान लाने के बाद चार चीज़ों का बहुत बड़ा दर्जा है। नंबर एक, हुक्म की बजावरी पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना। देखिए जब आपका कोई बड़ा है ना, वो आपको कोई हुक्म देता है, आपको अच्छा लगे कि ना लगे, दिल माने ना माने, ठीक है नहीं, आप कहें जी ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। बात वैसे अल्लाह ताला बड़े हैं, क्या अल्लाह ताला को इतना हक है कि वो हमें कोई हुक्म दें तो हम उस पर सब्र व तहम्मुल से जम जाएं? ये पहला दर्जा। दूसरी चीज़, कज़ा व कदर पर राजी बरज़ा रहना। जो मेरी तकदीर का फैसला था मैं उस पर राजी हूँ। लड़की बनाया कि लड़का बनाया मैं राजी हूँ, अमीर बनाया गरीब बनाया, गोरा बनाया काला बनाया, कहते हैं अपनी तकदीर पर राजी रहना, ये भी ईमान की पीक है। तीसरी चीज़, तवक्कुल के बारे में इखलास से काम लेना। यानी इतना ज़्यादा इंसान को अल्लाह ताला पे ट्रस्ट हो कि जब मैं अपने रब को पुकारूंगा तो मेरा रब हकीकत में मेरी मदद करेगा। और चौथी चीज़, रब करीम के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करना। मैं जब ये लफ्ज़ पढ़ती ना, तो मेरे जहन में एक बड़ा रुकू में गया हुआ, झुका हुआ, बहुत हम्बल सा पर्सन आता है। ठीक है जी, अल्लाह जी ठीक है, जो आपने कहा ठीक है। तो तस्लीम और रज़ा उन चार में से एक चीज़ है जिसको आप ईमान की चोटी कह सकते हैं। दाऊद ताई कहते हैं कि अमाल में अफसल तरीन अमल अल्लाह से राजी ब रज़ा रहना है। अच्छा, ये राजी ब रज़ा क्या होता है? देखिए दो रज़ाएँ होती हैं, एक बंदा खुश हो और एक ये कि रब खुश हो। अब आप इसको समझिएगा, ईमान वाले की ज़िंदगी में अक्सर क्या वक्त रहता है? अल्लाह भी राज़ी तो बंदा भी राज़ी। मसलन अल्लाह ने नेमत दी, आप कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, हम अल्लाह की नेमतों से राज़ी हैं, ये वक्त आ सकता है। यानी पहली सिचुएशन लिख ले, ये इस बुक में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ। अल्लाह की नेमतों में क्या नेमत है? अल्लाह बंदे से राज़ी तो बंदा भी राज़ी। यानी नेमतें मिली, आप भी खुश, अल्लाह भी खुश। एक दूसरी स्टेज आती है, अल्लाह तो खुश है उस काम पे, बंदा कोई इतना राज़ी नहीं है उसमें। लाइक मीन बच्चा मर गया, अब दुख हुआ ना, खुश कौन होता है बच्चे के मरने पे, लेकिन अल्लाह की रज़ा समझ के सब्र किया। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे कि अल्लाह तो राज़ी हो रहा है उस काम पे, खुश है, लेकिन बंदा खुश नहीं है लेकिन मान गया, ये भी हो सकता है। लेकिन एक तीसरा मुकाम है, बंदा कोई काम करके खुश हो रहा और अल्लाह उस पर नाराज़ है, ये ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता। क्लियर है बात? ये नहीं हो सकता कि एक ईमान वाला अपनी खुशियों के नाम पे, मस्तियों के नाम पे खुश हो रहा है और अल्लाह को उस पर इतना गुस्सा आ रहा, कहता फरिश्तों लिख लो ज़रा इसका अमल, झगड़ा डलवाऊंगा इसी घर में जिधर इतने अल्लाह के हुक्म टूटे। तो ईमान वाला अमूमी जो सिचुएशन रखता है ना, वो क्या आती है? अल्लाह जी ठीक आखे। और मुझे यहाँ फिर वो मिसाल दी हुई याद आ गई कि एक बाबा था, तो उसको कुरान नहीं पढ़ना आता था, शौक बड़ा था, कुरान से मोहब्बत बहुत थी, कुरान पढ़ना। तो कुरान पाक खोल कर ना, तो उसकी आयतों पे, लाइनों पे उंगलियां फेर रहा और कह रहा है, ए रब जो आखे सच आखे, ए रब जो आखे सच आखे, ए रब जो आखे सच आखे। ये है तस्लीम और रजा। अक्ल ही ना इस्तेमाल करे अल्लाह के किसी हुक्म पे। कुरान की किसी आयत को समझने के लिए अक्ल कभी मत इस्तेमाल कीजिए, ये है आपकी रजा। जो हम तावीलें लाते हैं ना, और जो हम अंदर से दाल की बाल और कहते बड़ी दूर की कौड़ियां लाई उसको काट दीजिए। तो अल्लाह की रजा पे राजी रहना अल्लाह पे पूरे ट्रस्ट की एक अलामत है। अब्दुल वाहिद कहते हैं, सब्र तहम्मुल पर अगर किसी अमल को मेरे ख्याल के मुताबिक फोकियत हासिल है, यानी सब्र और तहम्मुल बहुत बड़ी चीज़ है ना, लेकिन अगर इससे भी कोई बड़ा अमल है ना तो वो रजा और खुशनुदी का अमल है। यानी सब्र में क्या है, जबर मजबूरी। हम कहते हैं अच्छा जी फिर सब्र ही करती हूँ, और खुशनुदी और रजा क्या है, इसको अपनी खुशी बना लेती हूँ। मैं इसको फिर आपको समझाने की खातिर प्रैक्टिकल जिंदगी से बताती हूँ। एक लड़की किसी माहौल में जाती है, अब अच्छा बुरा सब होता है लेकिन घर का माहौल फर्क है। अब एक सूरत क्या है, वो कहती है मैं तो सब्र ही करूंगी, क्या कर सकती हूँ अब सब्र। अब जब सब्र करेगी ना तो दुखी, रोती धोती, मैंने ऐसे ख्वाब नहीं देखे थे, मेरे मियाँ का ये मच था, मैं तो ऐसी थी, मैं तो वो थी। अब क्या हुआ कि वो सब्र तो कर रही है लेकिन कुढ़ रही है, जल रही है। हो सकता है बीमार हो जाए, हो सकता है टीबी हो जाए, हो सकता है कैंसर हो जाए, और कुछ नहीं तो बदमिजाज हो जाए। ये एक सिचुएशन है। अब दूसरी सूरत है, वो कहती है जो मिलना था मिल गया, यही था मेरे नसीब में। मैंने सोचा था गुलफाम शहजादा, लेकिन ये कोई इतना खूबसूरत नहीं है मेरा मियाँ, इट्स फाइन, क्या हो सकता है। मैंने सोचा था कोई करोड़पति आएगा मुझे लाने, ये तो चंद हजार कमाता है, हो गया 300 के। 10 चीजें सोच ले, और जब सोचने के बाद जो रियलिटी है ना उसके शौहर की, के असल में मेरा गोल आज से यही है, मुझे ऐसे ही हस्बैंड चाहिए था। बात वाजी हुई है? पहली सूरत में वो रह भी रही है लेकिन सब्र कर रही है, दूसरी सूरत में वो राजी बरजा है। ये है असल में खुश रहने का राज। रेजिस्टेंस छोड़ दो, फ्रिक्शन खत्म कर दो, अल्लाह के फैसलों पे घुलो नहीं, जलो नहीं, कुड़ो नहीं। इतनी सी तुम्हारी अकल है, तुम इतने आसमानों जमीन के रब के फैसले कैसे जानोगे। तो वो कहते हैं कि सब्र से भी बड़ी चीज फिर रजा है, जिसको आप कह लीजिए कि तुम उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लो। और अक्सर ये जुमला मेरे मुंह से निकला है क्लासेस में कि अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करने का नाम तस्लीम और रजा। चॉइस बदल लीजिए। छोटी छोटी मिसालें हैं जिंदगी में, आपके हस्बैंड मिर्चे नहीं खाते, आप खाते। अब एक तो के हर खाने पे जले कुड़े, आपके थोड़ी सी तो डालूं, मैं फीका क्यों खाऊं। वो कहते नहीं मुझे तो बहुत मिर्च लगी। अब क्या करें आप, या तो फिर दो खाने बनाएं, वो भी कोई मोहब्बत की अलामत नहीं। आप एक काम कर लें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक कतरा कम करते जाएं, 6 महीने 3 महीने 4 में आप भी मिर्चों को जिंदगी से निकाल दें, तो आप तस्लीम और रजा की पिक्चर बन जाएंगी। अब आपको भी मिर्चें चुभेंगी, आप कहेंगी वो क्यों नहीं खाना शुरू कर देते। हमारा मसला ये जो वो वाला है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। आप देख लीजिए किसकी बात ज्यादा ठीक है, कर लीजिए, या बदलो या बदले जाओ। और यकीन करें कि अल्लाह ताला ईमान की वजह से बहुत सारी हिकमतें आपको सिखा देता है। तो अल्लाह ताला के साथ राजी रहना। फिर कहते हैं मेरे इल्म के एतबार से रजा से अशरफ और बरतर नीस बुलंदो बाला मरतबा किसी और चीज़ का नहीं, और रजा ही मोहब्बत की मेराज है। इसको हाईलाइट कर लें, अल्लाह की रजा मोहब्बत की मेराज है। और मेराज किसको कहते हैं, उरूज को कहते हैं, उरूज बुलंदी। यानी ये सारी नमाजें जो हमें पढ़ाई जाती है ना, ये इसलिए थोड़ी पढ़ाई जाती है हम के फिर मौलवी बोल उठे, इनको चैन ही कोई नहीं, अभी एक पढ़ी थी फिर नमाज का वक्त आ गया। ये कोई नमाजें, अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ना और उसको खुशी बनाना। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि रख दी गई मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। सूरह तौहा में क्या आता है, नमाज पढ़ो लाल का तरदा, नमाज पढ़ो ताकि अल्लाह खुश हो जाए, नहीं नमाज पढ़ो ताकि तुम खुश हो जाओ। हम कहते हैं ना नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह खुश होगा, सूरह तौहा की आयत जाके देखे, अल्लाह कहते हैं नमाज तुम पढ़ो ताकि तुम खुश हो, क्योंकि नमाज बंदे को खुशी देती है। तो रजा ही मोहब्बत की मेराज है, और इसी को मोहब्बत की खश्ते अव्वल करार दिया गया। यानी सारी बात का खुलासा ये कि जिससे मोहब्बत होती है उसका हर फैसला अच्छा लगता है, अच्छा लगे या बुरा उसको इंसान को अच्छा ही लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत जो आप हमारे लिए छोड़ कर गए, अब आप पूछिए वो कौन सी है। बड़ी खूबसूरत बात है यहाँ आने वाली इमाम अहमद की तरफ से, पहले इसको समझ लीजिए कि हम कहते हैं ना अल्लाह के नबी की बहुत सारी सुन्नतें हैं। मैं आपसे पूछा आप कहेंगे मिसवाक करना, दाढ़ी में खिलाल करना, चप्पली पहनना, टोपी पहनना, और बीसियों ऐसी चीज़ें हैं, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। मुस्तकिल सुन्नत जो छोड़कर दुनिया से हमें गए वो क्या थी, तस्लीम और रजा। नबी की ज़िंदगी देखिए, दुनिया में उनके आने से लेकर दुनिया में से जाने तक हर मतवक्के तकलीफ़ और सदमा जो किसी एक इंसान को पहुंच सकता है ना, वो नबी सल्लम को पहुंचा। काबिले रहम होता है वो बच्चा जिसके दुनिया में आने से पहले बाप का इंतकाल हो जाए। मोहम्मद सल्लम वही थे। गुरबत भी थी और सारी बातें आप तारीख की सीरत की दोहरा लीजिए, किसी का बेटा ना हो तो फौत हो जाए, बदनसीब है। जिसके बेटियां ही बेटियां हो और बेटियां भी ज़िंदगी में फौत हो जाएं, बदनसीब है। जिससे लोग दुश्मन हो जाएं, जिसका ख़ानदान उसे बायकॉट कर दे, हम तो आंसुओं में आंखों में भरते हैं, अब तो ख़ानदान नाराज़ हो गया, अब तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। 3 साल तक सोशल बायकॉट रहा शाब अबी तालिब में। पिछले सेशन में आपसे जिक्र किया था ना, तकरीबन 700 के करीब मसनून दुआएं, कोई एक दुआ नहीं ऐसी मिलती जो आज हम मांगते हैं। इतने सदमे आपकी ज़िंदगी में पड़े, कभी नहीं मांगा कि अल्लाह कोई तो तरीका मेरे रिश्तेदार मुझसे खुश हो जाए। होते हैं तो हो जाए, अल्लाह तू खुश हो जा, घर मिल जाए, नहीं मिल, जो मिला उस पे खुश हो गए। तो इमाम अहमद एक मौके पे बहुत बड़ी आजमाइश में थे। किसको पता इमाम अहमद की आजमाइश क्या थी? अपनी हिस्ट्री से हमारा इतना कोई ताल्लुक है? और यकीन कीजिए इसी वजह से आज हम बात कर ही नहीं पाते। सिर्फ एक मसले पे उन्होंने कोड़े खाए थे कि कुरान मखलूक है या कलाम है। और वक्त का खलीफा उनको इतने कोड़े मरवाता था, कहते कि बड़े पहाड़ पे वो कोड़े पड़ते तो वो अपनी जगह से हिल जाता, लेकिन इमाम अहमद एक ही लफ्ज़ कहते थे, मैं तुम्हारी खातिर हक को नहीं बदल सकता, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान कलाम है। और बड़ा फ़र्क है, हम कहते छोड़ो छोड़ो जी, अच्छा एका कर लो, सारों को खुश रखो, कोई आपको छोड़ के ना जाए। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। आप एक बर्तन में सारी चीज़ें डालते थे, आप कैसे, आप क्या हैं ये आपको नहीं पता। तो ज़रूरत इस बात की कि हक पे आए। तो वो जब उस वक़्त मुश्किल में थे ना, तो कहा ताबईन, यानी जो तब ताबईन थे और आइमाए कराम और फुकहाए अमसा, 90 आदमियों का इस बात पर इजमा और इत्तफाक है कि इस सुन्नत में सबसे अव्वल दर्जे की सुन्नत जिसको अंजाम देते हुए अल्लाह के नबी ने दुनिया से वक्त गुजारा, वो क्या थी कि अल्लाह की दी हुई तकदीर पर दिल की खुशी से राजी होना और अल्लाह के दिए हुए हुक्मों के आगे सर झुकाना और उनके इत्तबा में सब्र का मामला देना। कितनी बात वाजे हो गई। यानी ये 3 बातें कहते हैं अल्लाह के नबी की मुस्तकिल सुन्नतें थी। आज हमें कोई कहे तो हम कहेंगे ये कौन सी सुन्नतें होती हैं, हमने इसका नाम तो कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा। तो क्या पता चला कि अल्लाह से राजी रहने वाले ही असल लोग हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जब बंदा अल्लाह से राजी होना चाहता है ना, तो अल्लाह ताला उसको अपना गिरोह कहते हैं। सूरत मुजादला 22 में अल्लाह ने एक डिटेल दी है, यानी वो लोग जो ला तजिदू न कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या आप उन लोगों को जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हैं ऐसा कभी नहीं पाएंगे क्या? युवादून मन हादल्लाह। ये बात इन्होंने यहाँ नोट की है कि जब बंदा अल्लाह की रजा पे राजी होता है ना, तो अल्लाह के दुश्मनों से कभी दोस्ती नहीं कर सकता। वो रसूल की मुखालफत करने वाले लोगों को कभी अपना नहीं कह सकता, चाहे बाप हो, बेटे हो, भाई हो, खानदान हो। वजह क्या है कि अल्लाह ने इनके दिलों पर ईमान लिख लिया। उलाई का कतवफी खुलू बेहमुल ईमान। जब ईमान दिल में आते हैं ना, तो बंदे को भी रिश्तेदारियाँ ईमान की नज़र से दिखती हैं। जब गज़वा बदर पूरी हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास आपका वो बेटा आया जो अभी मुस्लिम नहीं हुआ था। काबा, आपको पता है 3 दफ़ा आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, पर मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया। क्या आप मेरे अब्बा भी हैं? चले क्या हुआ, मुसलमान हो गए हैं तो क्या हुआ? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा कि तू 3 दफ़ा मुझे छोड़ता है, अल्लाह की कसम अगर तू 1 दफ़ा भी मेरी तलवार की जद में आता तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता, ये सोच करके तू मेरा बेटा। अल्लाह के लिए मोहब्बत होती है तो ख़ानदान रिश्ते बरादरियाँ नहीं आती, बल्कि उस मिशन के राही होते हैं। ऐसे ही लोगों को फिर हिजबुल्ला कहा गया। इसी तरह बशर बिन हारिस कहते हैं, जिस शख्स को तस्लीम और रज़ा की दौलत मिल गई वो बुलंद वाला मुकामात तक रसाई में कामयाब हो गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे और आपको ये नसीब कर दे। रबी बिन अबी राशिद कहते हैं, जिस शख्स ने तस्लीम और रज़ा के हसूल की दुआ मांगी, इसने बिलाशुबा अज़ीम शान चीज़ के हसूल की दुआ की। इसकी क्या दुआ है? किसी को आती कोई ऐसी दुआ के जिसमें ये बात हो कि अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हो जाऊँ? मांगते हैं जी। बेसिकली ये दुआ है, लेकिन अल्फाज को देखिए तो हालत बयान की जा रही है ना, सुबह शाम 3 दफ़ा फजर और 3 दफ़ा मगरिब में अगर आप ये पढ़ लेते हैं कि रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीना व बी मोहम्मद नबीयन, तो अल्लाह ताला उसको राज़ी कर देता है। तो आइए ज़रा थोड़ी सी इसकी डिक्शनरी के हिसाब से तारीफ भी देख लेते हैं। तस्लीम व रज़ा उर्दू में भी लफ्ज़ आम है, रा द्वाद या रा द्वाद वो कहते हैं। अरबी जुबान में रा द्वाद वो लफ्ज़ के साथ कितने लफ्ज़ आते हैं, यानी देखिए हरूफ इल्ला जहाँ आ जाता है ना वहाँ रा द्वाद या और रा द्वाद वो दोनों लफ्ज़ आते हैं। 73 टाइम्स ये रूट इस्तेमाल हुआ है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो रिदा उर्दू में भी हम बोलते हैं रजामंदी के मानों में, रिजवान इसी के अंदर है। रदा यर्दी रिदन वहुवा रादुन, ये सब लफ्ज क्या है, राजी होना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत है, अल्लाह मैं तेरी रजामंदी और खुशनूदी का वसीला पकड़ कर तेरी नाराजगी और खफगी से तेरी पनाह चाहता हूँ। ए अल्लाह मैं तेरी रजामंदी को पकड़ता हूँ कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे नाराज ना होना। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन सख़तिका, कुछ इस तरह के अल्फाज हैं, बड़ी मारूफ दुआ है, अगर किसी को आती है तो हैंड रेज करें। तेरी पनाह में आती हूँ तेरे सख़त से गज़ब से, इला रज़ा का तेरी रजा की तरफ, यानी अल्लाह के नबी की ये दुआ थी। अल्लाह से ये दुआ मांगा करते थे कि अपने गज़ब की बजाय मुझे अपनी रजा अता कर दे। फिर इसी तरह सूरत क़ारिया और सूरत अलहाका, सूरत क़ारिया 7 और अलहाका 21 में आता है, फ़हु वफ़ी ई शतिर रादिया। रादिया का लफ्ज़ यहाँ काबिले गौर है कि जन्नती लोग दिल पसंद ज़िंदगी में होंगे। तो रज़ा किसको कहते हैं, बड़ा खूबसूरत इसका मफहूम है, किसी चीज़ के हसूल पर कोई चीज़ आपने हासिल कर ली, दिली सुकून पहुँचना और राहत दिल का सामान मुहैया होना और इसको पाकर चैन और करार मिल जाना रज़ा कहलाता है। देखिए पहली बात है कोई चीज़ मिली तो दिल को सुकून आ गया, फिर दिल की राहत का सामान मिल गया और चैन और करार भी मिल गया। ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो रज़ा होगा। अब लफ्ज़ रिजवान जो हमारे उर्दू में भी बोला जाता है, फ़ौलान का वज़न है, रज़ा से बड़ी चीज़ है, हद से ज़्यादा रज़ामंदी और खुशनूदी को रिजवान कहते हैं। और सबसे बड़ी रज़ा अल्लाह की रज़ामंदी है, इसीलिए सूरह फ़त्ह आयत 29 में आता है, यत्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, अपने रब का फ़ज़ल और उसकी रज़ा ढूंढते हैं। फिर सूरह तौबा आयत 21, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिदवानुन, उनका रब उनको खुशखबरी देता है अपनी रहमत से और रिजवान की। अरब लोग कहते हैं इरदाहू, उसने उसको इतना दिया कि इसकी बुनियाद पर वो इससे राज़ी हो जाए, यानी दे दिलाकर किसी को खुश कर देना। इसी तरह तर दुआ कहते हैं, उसने उसकी खुशनुदी हासिल करनी चाहिए। एक शायर है तो उनका कॉल क्या है, अगर बुढ़िया गुस्से हो जाए तो इसे तलाक दे दो, इसे राजी करने की कोशिश मत करो और ना ही इसकी चमचागिरी की कोशिश करो। मतलब यह कि ये खुश नहीं होंगी, तो क्या फिर बात पता चली कि हुक्म के निफाज की खातिर दिल का करार पकड़ना तस्लीम और रजा कहलाता। सारी बातों में वही बात है। इसी तरह बास लोग कहते हैं, अल्लाह ने इसके नसीब में जो लिख दिया है इसके सामने कल्ब का सुकून और करार महसूस करना। क्या बास दफ़ा आप ऐसे लोगों को नहीं मिलते कि जिनकी हालत देखकर आपको दम रहम आने लगता। मिसाल है, एक ही बच्चा है तो वो हैंडीकैप है, एक ही बेटा था तो मर गया। बंदा सोचता है कि इतनी बड़ी तकलीफ किसी पहाड़ पे भी पड़े तो वो टूट जाए, लेकिन जब आप उन लोगों को मिलते हैं तो वो मुतमईन होते हैं, सुकून आ जाता है, वो अपनी इस बात पे राजी हैं। तो ये बड़ी नेमत है, किसी बीमार को उसकी बीमारी के बावजूद सुकून और खुशी मिले, ये अल्लाह की रहमत है। और बाज़ मैं देखे कि किसी पे पड़ी देखे आपको बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता जब आप पे पड़ती है तो आप सब्र करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब बचपन था ना, तो सोचते थे कि जब लोगों के करीबी रिश्तेदार मर जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है, जैसे माँ या बाप। हमारी साथी थी अपने ग्रुप की थी, तो हम लोग अभी कॉलेज में ही थे या स्कूल में थे, एनी वे उसके वालिद की डेथ हो गई ना, तो वो मासूम सा जहन होता है उस वक्त, 12, 14, 15 साल की उम्र क्या होती है, तो ऐसे लगता था कि ये इतना बड़ा पहाड़ है, हाय ये अब जिंदा कैसे रहेगी, हाय इसका गुजारा कैसे होगा, लेकिन खाते पीते रहते हैं। फिर जब बंदे के अपने ऊपर ऐसी कोई चीज़ पड़ती है तो लगता है कि कुछ नहीं हुआ। बल्कि किसी से एक बात सुनी कि जब कोई मुसीबत डालनी होती है अल्लाह ने बंदे पे, तो उससे 40 दिन पहले ही उसके ऊपर एक सब्र की सिल डालना शुरू कर देता है, फिर जब उस बंदे पे पड़ती है तो उसको इतनी नहीं चुभती। इसी तरह आप अपने रिश्तेदारों में, साथियों में कई ऐसे लोगों का जिक्र सुनती होंगी, तो आप सुन के तौबा तौबा करती हैं, लेकिन आप उनको देखें तो वो इतने परेशान नहीं होते। तो वो चीज़ क्या है? तस्लीम और रज़ा। अल्लाह ताला किसी को अपने हालात पर राज़ी कर दे, इससे बड़ी कोई दौलत ही नहीं है। कभी भी आपको अपने हालात में कोई गड़बड़ लगे ना, तो आप कहें शुक्र है इससे बड़ी मुसीबत तो नहीं आई। जैसे कभी सर में दर्द है तो कहते हैं शुक्र करो कमर में दर्द तो नहीं है, शुक्र करो कैंसर तो नहीं है ना। हम छोटी छोटी चीज़ों का शिकवा करते हैं, हालांकि उससे बड़ी भी तो हो सकती थी ना। तो जितना आप अपने हालात के मुताबिक खुश रहेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए उसको आसान करेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इमाम इब्ने हजर कहते हैं, कज़ा व कदर के पेश नज़र कल्ब में ठहराव की कैफियत रज़ा कहलाती है। अब आप ये सारी चीज़ें नोट करते जाए ना, क्या मेरा दिल मुतमईन है, करार है और ठहराव है अंदर। अपने हालात से मुतमईन रहना ही असल में सब जगह। इसी तरह कज़ा व कदर की बुनियाद पर गर्दिश अय्याम की बला खेजी की वजह से पैदा होने वाले मामले में इख्तलाफ के पहलू को अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देना तस्लीम और रज़ा कहलाता है। यानी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे हालात आते हैं, आपको लगता है ये चीज़ मेरे हक़ में बहुत बुरी है, ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं वो जो वसवसे दिल में आ रहे हैं ना, कट कट ये क्यों हुआ, उसको अल्लाह पर डाल दो कि अल्लाह ने किया तो ठीक ही किया होगा, अल्लाह तो बेहतर ही करता है ना। जब अल्लाह पे आप डाल दें तो अल्लाह कभी भी पीछे नहीं होता। मिसाल देती हूँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला इशारा कि बेटे की गर्दन पे छुरी चला दो। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाकई ये तस्लीम और रज़ा के पैकर ना होते तो उस वक्त सोच में पड़ जाते ना। उन्होंने क्या सोचा, जब अल्लाह ने कहा तो ठीक ही होगा। और उनकी बीवी का भी यही अमल था ना, जब बीवी को छोड़ने गए कहा बताएं क्यों जा रहे हैं, बस चुप, कहा ये अल्लाह ने कहा है, कहा अल्लाह ने कहा, फिर फिक्र नहीं करो। क्या बीबी हाजरा का वो जुमला, कि आप मुझे फिक्र नहीं कि अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। कभी मैं और आप उस मुकाम पे आ जाएं, हमारे सब रुके हुए काम चल पड़े, या हमने खुद ही अपनी हर्डल्स रखी हुई हैं। फिर इसी तरह आप देखिए एक और खूबसूरत तारीफ है इसकी दुनियावी एतबार से। अब आप सोचिए, बहुत ही प्यारा ये हम पाकिस्तानी कल्चर वालों पर चोटा है। दुनियावी एतबार से आप बीती पर नदामत से गुरेज करना, और इसके हाथ ना आने पर कफे अफसोस ना मलने को तस्लीम और रज़ा कहा जाता है। पता क्या, कहानियाँ ही सुनाते रहते हैं लोगों का, अब हाल पूछे, अब बैठो तो सही जरा इधर, ये हुआ ऐसे हुआ मेरे साथ, ये दो तरह के हालात हैं, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। एक ज़ाती ज़िंदगी में बीमारियाँ परेशानियाँ आती हैं, और दूसरी लोगों की तरफ से जो हमारे साथ हालात पेश किए जाते हैं। इधर क्या पता चला कि अपनी कहानियाँ ही सुना सुना के लोगों को ना बताओ कि मैं इतनी दुखी, ये हुआ भाई, जो होना था हो गया, उतना जोर से कह कहा लगाओ और हंसो। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है, वो कहते हैं जोहद या दुनिया से किनारा कशी को भी तस्लीम और रज़ा कहा जाता है। यानी ख्वाहिशें ख़त्म कर ली जो रास्ते में रुकावट बनने वाली थी। तो क्या खुलासा हुआ सारी बात का, ये आखिरी हिस्सा पढ़िएगा, ये सारी बहस का खुलासा है। बंदे की तरफ से रज़ा ये है, बंदा अल्लाह तआला के हुक्मों और मना की हुई चीज़ों के सामने सर झुका दे। ठीक है, शराब हराम है तो छोड़ दीजिए, ख़त्म, ऐसे ही अड़ रहे हैं ऐसे ही अड़ रहे हैं, ना पीजिए, कोई बड़ी मज़े की चीज़ भी नहीं है। और अल्लाह ने कहा कि तुम मेरी पसंद से जियो तो जियो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और राज़ी बरज़ा रहे, गोया के बंदा मर्जी मौला हमातन उला की जीती जागती तस्वीरों। मतलब क्या, कि बंदा चलता फिरता अल्लाह की मर्ज़ी का बन जाए, और तकदीर की वजह से जो मुसीबतें आएं इस पर बेसब्री का मुजाहरा ना करें, बल्कि इस बारे में अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दे, और इस दुनिया से लौ ना लगाएं, बल्कि इससे दामन बचाकर निकल जाएं। यह है तस्लीम और रज़ा की असल हकीकत जो आगे हम पढ़ेंगे। तो मैं इस पे एक दो कमेंट दे देती हूँ। बोनलेस मीट, बी बोनलेस मीट। देखिए, आपने कभी बोनलेस मीट पकाया या काटा हो, कितना मज़ा आता है उसको, जिधर से काटो ऐसे कट कट जाता है, ना हड्डी ना कांटा। गो विद द फ्लो, इंग्लिश में कहते हैं जिधर का फ्लो है ना उधर चलो, बहुत आसान होता है जाना। तस्लीम और रज़ा क्या है, अल्लाह के मामले में हड्डी ना बनो। ये जो हम सारी ज़िंदगी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ना कि जो मेरे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो असल में ये तस्लीम और रज़ा की कमी है। अल्लाह ने लोगों को मुख्तलिफ बनाया है, उनकी सलाहियतें मुख्तलिफ, उनसे काम मुख्तलिफ लेने हैं, तो इसलिए मेरा और आपका कामयाब होना किस सूरत में कि जो रब ने दिया, जो कहा, उसी को करने को तैयार हो। पूरी कोशिश कीजिए दी बेस्ट पे, ट्राई योर बेस्ट, लेकिन रिजल्ट्स और जो एंड है वो अल्लाह पे डाल दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके साथ आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आएगा और ख़ुशी भी आएगी। और ये दौलत दुनिया के किसी बाज़ार में नहीं बिकती, बल्कि मैं अगर गलत ना कहूँ तो ये कह दूँ कि ये जन्नत की चीज़ है जो दुनिया में लाई गई। तस्लीम और रज़ा दुनिया की चीज़ नहीं है, ना दुनिया के खाने आपको खुश कर सकते हैं। रज़ा मीन राज़ी, बी प्लीज्ड, हैप्पी, पीसफुल। दुनिया की कोई नेमत, कोई पिलो ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर आपको सुकून की नींद आ जाए, लेकिन अल्लाह की रज़ा के साथ सोएंगे तो पत्थरों पे भी नींद आ जाएगी। इसी तरह हम दुनिया की चीज़ों को पाकर सोचते हैं हम अपने आप को खुश करें, और हर बंदा खुश होना चाहता है। आज लोगों ने खुश होने के लिए क्या कुछ नहीं कर लिया, कपड़े तक फाड़ लिए फिर भी खुश नहीं हुए। तो असल खुशी यह है कि अल्लाह की खुशी को अपनी खुशी बना लें, यही कामयाब ज़िंदगी है। और जब बंदों के साथ होती है तो आप कहते हैं फ़लाँ ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लड़की गई, शुरू में मुश्किलात थी, लेकिन फिर उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो जब एक इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो घर बच जाता है ना, तो जब अल्लाह के हुक्मों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना तो बंदगी का रिश्ता बच जाता है। फिर आप अल्लाह को अल्लाह का हक देते हैं। तो यही सारी बात है, ये सब कुछ अब हम आगे पढ़ेंगे। जज़ाक अल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तूब अलैना इन्नक अंतत तव्वाब रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।